सची माता को धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद को भी प्रभु के गीत सुना के प्रभुपाद को प्रसन्न किया था सची देवी माता जी ने। जब छोटी थी प्रभुपाद अफ्रीका गए थे, वेर इन अफ्रीका, कहा अफ्रीका में, कहा डर्बन, डर्बन साउथ अफ्रीका। यू वर 8 इयर्स, यू वर 11, तो 11 साल की थी प्रभुपाद, तो प्रभुपाद भी सुने थे उसके गीत, तो बड़े प्रसन्न थे प्रभुपाद। तो तब से गा ही रही है और गाती ही रहेगी प्रभु के गुण। उसका कैसे टेप का भी, सीडीज का वितरण हो रहा है, आप जरूर लीजिए, सुनते जाइए उनके उनके गीत, प्रभु के गान, गुणगान। तो प्रसंक्षिप्त बनाते हैं हम अब ये कथा। वरुणेन्द्र ऋतछत्रेण ऋतकुंडल बंधुना ऋतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितौ भौम चेष्टितम्। हरि बोल, हरे कृष्ण। भौमासुर से भूमि से भौम होता है, ये भूमि का ही पुत्र था भौमासुर, दूसरा नाम नरकासुर। चाहे दिवाली के समय कोई नरकासुर का कुछ है ना? नरक, नरक चतुर्दशी शायद, तो वही है ये। तो जिनके दैत्यों की संख्या बढ़ गई, धरती माता अपने ही पुत्र, लेकिन जब बदमाश होते हैं तो उनको गोद में बिठाना नहीं चाहती, थोड़ा बोझ लगता है धरती माता को। धरती भी, पृथ्वी भी हमारी एक माता है, हमारी 7 माताएं बताई हैं हमारे शास्त्रों में। हम मनुष्यों की 7 माताएं हैं, उसमें एक माता है धरती माता, पृथ्वी माता। हमको कौन खिलाता है? पृथ्वी खिलाती, धरती माता खिलाती, और भी माताएं हैं। तो हुआ 5,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास, और फिर देवता सभी विष्णु के पास पहुंचे थे। प्रभु विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्टों का संहार करने आपको स्वयं को ही आप पधारना होगा। तो प्रभु आए हैं, तो हुआ कईयों का उद्धार, वध किए असुरों का, महाराज बता रहे थे। भगवान जब वध करते हैं तो उसके साथ उद्धार भी है उन असुरों का। अब भौमासुर की बारी है। प्राग ज्योतिषपुर नाम का स्थान, उसकी राजधानी आसाम की ओर बताते, आसाम की ओर वो स्थान प्राग ज्योतिषपुर, वहाँ जाना था प्रभु को। तो तो समाचार आया स्वर्ग से, इंद्रेन ऋत छत्रेन, तो वरुण का छत्र, वरुण देवता के छत्र, और अदिति अदिति माता के कुंडल, और सभी देवताओं का एक विशेष स्थान अमर अद्री, उनका कोई पर्वत विशेष, ये सब चोरी किए हैं, छीन लिए हैं भौमासुर ने। तो प्रभु अब ये वरुण देवता और इंद्र सभी देवताओं की मदद करनी, मतलब इस असुर का संहार वध। ये जब समाचार आए थे, वैसे उसके पहले एक और भी समाचार आया था, ये 16,100 जो राजकुमारियाँ थी उन्होंने एक अपील भेजी थी सभी के हस्ताक्षर के साथ, 16,108, कि प्रभु आप द्वारका में समाचार मिला, आप अभी हमारा कुछ कल्याण कीजिए, स्वीकार कीजिए हमें, नहीं तो संसार में कौन हमारा स्वीकार करेगा। क्योंकि हमारा अपहरण हुआ है, अब हम बंदी बनाई गई है, और यहाँ से मुक्ति भी होगी तो हम तुम्हें कोई स्वीकारेगा नहीं, हमारा जीवन कलंकित हुआ है, तो प्रभु आप ही हमारा उद्धार कीजिए। तो ये दो प्रकार के, स्वर्ग से आए हुए देवताओं की समस्या, अदिति के कुंडल, वरुण के छत्र, चोरी हुए, भौमासुर ने चोरी की, और भौमासुर ने ही इन राजकुमारियों को बंदी बनाया था। तो प्रभु जाते हैं, गरुड़ पर विराजमान होकर जाते हैं, उनका गरुड़ अपना आसन है, जैसे आपके भी आसन या वाहन है, देवताओं के भी अपने अपने वाहन है, गणेश जी का भी अपना वाहन है, कौन सा आप जानते हो, गणेश जी प्रसिद्ध है, उनका वाहन भी प्रसिद्ध है। तो मंदिर के बाहर ही, जैसे घर के बाहर गाड़ी खड़ी होती है ना, तो गाड़ी देख के भी मालिक छोटा है बड़ा है, किसी के घर के समक्ष तो बाइसिकल ही है, किसी घर समक्ष तो और कोई गाड़ी पार्क की हुई है, तो पता चलता है कौन है मालिक, कितने बड़े छोटे कैसे है। तो मंदिरों के समक्ष वैसे व्हीकल, शिव जी का पार्क होता है वाहन नंदी, तो विष्णु का है तो गरुड़ जी, तो पता चलता है मंदिर के सामने कौन खड़े, कौन सा वाहन। तो प्रभु बाहर आते ही गाड़ी तैयार, तो प्रभु का गरुड़ वाहन। जो गरुड़ वाहन कहाँ आया था, प्रभु ने भेजा था तुकाराम महाराज के लिए, 350 वर्ष पूर्व की बात है, जब कोई आकाश में विमान उड़ता नहीं था, इंडियन एयरलाइंस और एयर फ्रांस, एयर फ्लॉट, क्या क्या ये नहीं चलती थी, तब की बात है। विमान तो स्वर्ग में कब से चलते ही है, विमान कोई नई बात नहीं है, पुनः हम लोगों ने हम नकल कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं, कोई राइट ब्रदर्स हुए, राइट ब्रदर्स, पता नहीं राइट की रॉन्ग ब्रदर्स, बट राइट ब्रदर्स उनका नाम, तो उनको क्रेडिट जाता है, विमान उनका क्रिएशन, उनका उन्होंने बनाए अपने कोर्ट यार्ड में, उन्होंने प्रयोग किए, और धीरे धीरे अब जंबो जेट्स आकाश में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन वैसे विमान तो शास्त्रों में कहे हैं, भागवतम में कहे हैं, विमान तो बड़े कॉमन स्वर्ग में और वैकुंठ में भी विमान ही विमान है, विमान कोई नई बात नहीं है। तो वह विमान भिन्न प्रकार के विमान हैं, तो गरुड़ भगवान का विमान कह सकते हैं। तो उस विमान में गरुड़ पर बैठे प्रभु और साथ में सत्यभामा को बिठाए, कई सारे कार्य प्रभु करना चाहते हैं। प्रभु जाएंगे वाया प्रागज्योतिषपुर, प्रागज्योतिषपुर जाके उनको कॉन्फिडेंस है कि वहाँ जरूर हम अदिति का जो कुंडल है जो चोरी किया हुआ है भौमासुर ने, उसको भी छीन लेंगे, वापिस लेंगे और वरुण का छत्र, और लौटाने के लिए हमें जाना है, स्वर्ग जाएंगे। तो सत्यभामा साथ में जा रही है ताकि वहाँ से जब लौटेंगे तो साथ में एक पारिजात का वृक्ष भी ले आना है, शॉपिंग, पेड़ का शॉपिंग। तो पत्नी जा रही है पति के साथ, ना जब भूल सकते हैं तो साथ में जा रही है, तो मेक श्योर कि वो जरूर शॉपिंग होगा, लाया जाएगा। तो हुआ, और साथ ही साथ इन 16,100 कुमारियों का उद्धार करना है, तो ये सारे कई सारे उद्देश्य सफल होंगे। तो वह प्रभु जाते हैं, तो पहले तो उनको सामना करना पड़ता है मूर राक्षस के साथ। ये मूर भौमासुर के अंग रक्षक है, उनके सारे किले और राजधानी के, उनके साथ भी सेना और उनके कमांडर इन चीफ है। तो भगवान उनके साथ अपनी गदा का उपयोग करते हुए युद्ध करते हैं, और मुरारी, और कौन बनते मुरारी, भगवान कौन बन गए मुरारी, यही मूर है। मुरारी मतलब अरी मतलब शत्रु, ये कई बार ये अरी बहुत उपयोग होता है इसका भगवान के नामों में, मुरारी, असुरारी, और कौन, कई सारे हैं। अरी मतलब शत्रु, रावणारी, रावणारी कौन है, रावण के अरी राम, रावण हरी नहीं कह सकते। हमारे एक भक्त का दिल्ली में है, तो उनका नाम रावण आरी है, मतलब राम, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते उनको, तो रावण हरी कहते रहते, रावण हरी। रावण आरी मुरारी, तो भगवान मुरारी बने, और मुरारी को जब वध किए तो फिर भौमासुर का वध करना भी कठिन नहीं, प्रभु के लिए तो क्या कठिन है, क्या कठिनाई है, ये प्रभु की लीला है। प्रभु भी इस प्रकार अपनी वीरता शौर्य का प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो किसी अति बलवान व्यक्ति को ढूंढते, उनके साथ युद्ध खेलते हैं। भगवान के लिए हर्ष का विषय है, यह आनंद प्रदान करता है। प्रभु का क्रोध भी होता है, क्रोधित भी होते हैं प्रभु, लेकिन साथ ही साथ प्रसन्नता भी प्रभु को प्राप्त होती है। तो भौमासुर का भी जब वध हुआ, बड़ा विस्तृत वर्णन आया है इस युद्ध का, यहाँ कई पन्नों में वर्णन सुनाए हैं, आप पढ़िएगा। हा 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 हेति साध्वीति ऋषया सुरेश्वरः माल्यैर् मुकुन्दं विकिरन्त ईडिरे तो जब भौमासुर का वध किए तो उनके सगे संबंधी तो हाय हाय कर, हाय हाय क्या हुआ, हाय हाय। और ऋषिगण क्या कहे, साधु साधु बहुत बढ़िया, ठीक ही किया, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, स्वागत है इस बात का। तब क्या कहा जाता है, कहो साधु 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 साधु, वेल डन, जिसको ना वेल डन कहते हैं, वेल डन वेल डन वेल डन, साधु साधु। तो एक पार्टी कह रहे हाय हाय, दूसरी पार्टी क्या हाय हाय कहने वाला कोई है, और होगा तो कौन होगा, वो भौमासुर का ही कोई सगा संबंधी, पता लगवाना कोई है। तो पुष्प वृष्टि, देवता बड़े प्रसन्न, क्योंकि देवताओं का अदिति का कुंडल प्राप्त होगा, वरुण का छत्र प्राप्त होगा, कुछ विशेष आद्री प्रदेश वो भी प्राप्त होगा। तो देवताओं का ध्यान था, ये मेजर इवेंट, उनका ध्यान वहाँ से देख रहे हैं, देवता देख सकते हैं दूर से, या देवता पास भी पहुँच सकते हैं अपने अपने यानों में बैठ के। जहाँ भगवान है, क्योंकि भगवान जब अपनी लीला खेलते हैं तो क्योंकि देवता तो भगवान के ही नियुक्त किए हुए व्यक्ति है, 33 करोड़ जो प्रभुपाद कहते, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है भगवान के, विभाग है या डिपार्टमेंटल हेड्स है, या अलग अलग मंत्रालय मंत्री है, ये सारे संसार का ब्रह्मांड का जो कारोबार अध्यक्षता ये कार्य है, ये देवता संभालते हैं, भगवान की मन का भगवान के सेवक हैं। तो भगवान जब पृथ्वी पर होते हैं तो देवताओं का सारा ध्यान भगवान का, हर दिन प्रतिदिन का सारे कार्यकलाप, अब नेक्स्ट इवेंट क्या है, अब क्या है, अब तब क्या है, कहाँ है, हाँ, तो वो देखते रहते हैं। अब भगवान की जैसे भी जीत होती, कई हत्या हुई, किसी वध हुआ किसी असुर का, तो देवतागण जरूर वहाँ पुष्प वृष्टि करते हैं, नगाड़े बजाते हैं, और शहनाई बजती है, और अप्सराएं नृत्य करती है, और गंधर्व गाते हैं गीत। हर व्यक्ति अपने अपने जो कला है उसका प्रदर्शन करता है, उसी के साथ अपना हर्ष व्यक्त करता है, अनुमोदन करता है, अभिनंदन करता है भगवान के उस कार्यकलाप का। तो यहाँ भी भौमासुर का वध हुआ है, तो सारे देवता बड़े प्रसन्न हैं। तो सबसे अधिक प्रसन्न तो भूमि है, उसको दुख होना चाहिए था अपना, लेकिन बदमाश जो पुत्र था तो प्रभु ने स्वयं वध किया, तो अच्छी बात की, भूमि जानती है इसी में उद्धार भी है, तो उसका भी बोझ कम हुआ और पुत्र का उद्धार भी हुआ एक ही साथ। तो प्रभु को नमस्कार करती हुई प्रार्थना करती है, भूमि रुवाच नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर। कैसे है प्रभु, शंख गदा चक्र धारण किए हुए, भक्ते छो पात्य रूपाय परमात्मन नमोस्तुते नमः पंकज नाभाय। कुंती भी इसकी ये प्रार्थना कहती है, वैसे कुंती ने जो प्रार्थना की है, कुंती की प्रथम स्कंद में जो प्रसिद्ध जो प्रार्थनाएं हैं उसमें एक प्रार्थना है, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। बड़ी सुंदर प्रार्थना है, बड़ी सरल भी है, आप कंठस्थ भी कर सकते हो। एक एक प्रार्थना आप सीखो, जब प्रार्थना का समय आता है तो श्रीमद् भागवत में जो लिखी हुई प्रार्थनाएं हैं ये प्रमाणित है, उचित है। नहीं तो आजकल और भी लोग ऐसी प्रार्थनाएं, तो नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमः अजाय जनयित्रेश्च ब्रह्मण्ये अनंतशक्तये परा वरात्मन भूतात्मन परात्मा परमात्मन नमोस्तुते। ये प्रार्थना के उपरांत भूमि देवी उस स्थान पर ले जाती है प्रभु को जहाँ भौमासुर ने 16,100 राजकन्याओं को बंद किया था। वो स्थान कितनी सारी 16,100 तो कोई डॉर्मेटरी होगी, ऐसा विशाल भवन, बड़ा राजा था भौमासुर। यहाँ लिखा भी है बड़ा ऐश्वर्य पूर्ण रिद्धि सिद्धि संपत्ति से पूर्ण थी वो राजधानी। प्रभु देखते हुए जा रहे हैं, तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्ष नरवीरम विमोहिता। तम उनको जब देखा 16,100 राजकुमारियां एक ही साथ, उनकी नजर केवल एक व्यक्ति पर है। तम उसको प्रविष्टम, तम प्रविष्टम पहले उनको प्रवेश करते हुए देखा कैसे है। नरवीरम, नरों में वीर श्रेष्ठ शूर वीर, मोहित हुई भगवान के सौंदर्य से, भगवान के हर बात से मधुरम, भगवान की हर बात मधुर है, माधुर्य है, मिठास है। अधरम मधुरम, हर बात मधुर। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, ऐसे कहा जा सकता है, और क्या कह सकते हैं। मधुराधिपति ही तो है भगवान, मधुरता के पति, मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। उस मधुराधिपति के पति की हर बात अखिलम, हर बात मधुर है। तो सारा वैसे एक मधुराष्टक नाम का अष्टक है, उसमें कई सारी बातें मधुर 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 बातें, लीला मधुरा, गोपा मधुरा, ये मधुरा वो मधुर, हर बात मधुर। उनका रूप मधुर, सौंदर्य मधुर, उनके भक्त मधुर, उनका धाम मधुर, उनकी लीला मधुर, उनके वस्त्र, उनकी मुरली, उनकी रेणु, उनकी धेनु, सारे मधुर। यष्टिर सृष्टिर सब मधुरम मधुरम। तो ऐसे प्रभु को प्रवेश करती हुई ये राजकुमारियां जब देखी तो विमोहित हुई, मनसा वव्रीरे अभीष्टम पतिम, तो मन ही मन में वर लिया और संकल्प भी हुआ तत्क्षण, हाँ ये हमारे पति, अब ये हमको स्वीकार करते हैं, तो धन्य होगा हमारा जीवन। तो प्रार्थना कर रही है, प्रभु को प्रार्थना कर रही है, ऊपर वाले को, विधाता मह्यम धाता तद अनुमोदताम। अगर विधाता का अनुमोदन है, स्वीकृति है, तो पतिरयम मह्यम, यही तो पति, इति सर्वः पृथक कृष्णै भावेन हृदयम दधु। तो हर एक ने अपने अपने हृदय प्रांगण में प्रभु के चरणों में न्योछावर कर रही है, अपने को समर्पित कर रही है अपने को। जो भी अभी उनके पास जो है वो ही है उनका, और पास और तो कुछ है नहीं उनके पास। उस गीत में तुम लोग गाते मानसो देहो गेहो जो किचु मोर अर्पिलो तू अपदे नंद किशोर। लेकिन मानस तो उनके पास मन है और देह है और कुछ नहीं है, गेह घर नहीं है और किचू किचू और कुछ भी नहीं है। उनके पास तो केवल अपना मन है, तन है, धन नहीं और कुछ नहीं। तो जो भी उनके पास है वैसे भावेन हृदयम, और क्या चाहिए। हमने सब कुछ दिया प्रभु को लेकिन अपने को नहीं दिया। तो हमने वैसे पूरा समर्पण तो नहीं किया। तो भगवान को जो हम देते हैं उसमें अपने को अपना पूरा समर्पण, चार बातें जो हम देते हैं भगवान को, यस नॉट नाउ दैट ओके चला गया नहीं आ रहा। तो हुआ तो भावेन कृष्णे भावेन हृदयम दधु, तो अपना प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति न्योछावर किया। तो उसी के साथ प्रभु ने उन सभी को स्वीकार भी किया और तुरंत व्यवस्था की। ता प्राहिणो द्वारवतीम, द्वारका के लिए भेजा, भेज दिया उन सभी को। नर यानई, किस कैसे यानों में, नर यानई मतलब पालकी में बिठाया, नर मनुष्य ही यान बने हैं। तो कल्पना कर कितने सारे नर मनुष्य ढो रहे हैं और कहाँ से कहाँ, कहाँ असम की ओर, वो प्राग ज्योतिषपुर, वहाँ से कहाँ जाना है द्वारका, 3000 किलोमीटर्स हो सकता है, 2500 किलोमीटर कैसे जाएंगे, ना हाथी है ना, वहाँ पैदल ही जाना। तो प्रभु की सेवा हो रही है वैसे, ये स्त्रियाँ भी वैसी साधारण नहीं है। प्रभु अगर विवाह के लिए तैयार है उनके पास उनके साथ, तो ये स्त्रियाँ इस संसार के बद्ध जीव तो नहीं है। जिस स्थिति से वो गुजरी है और बंदिस्त है, बंदी खाने में है, जो भी है, ये साधारण स्त्रियाँ नहीं है। भगवान की अपनी निज नित्य पार्षदा है, भारिया है, और पुनः प्रभु स्वीकार कर रहे हैं उन सभी को। तो उनकी सेवा करने का अवसर इन कई सारे नरों को जो नरयान बने हैं, पालकी ढो रहे हैं, तो उनको भेजने की व्यवस्था प्रभु करते हैं। अभी अब यहाँ से स्वर्ग के लिए प्रस्थान होगा, प्रभु ऊपर जाएंगे स्वर्ग की ओर, तो इन सभी को भेजने की व्यवस्था और साथ ही साथ अंबरान उनको वस्त्र की व्यवस्था, कोशान कोई धनराशि, ये सारी व्यवस्था, रथ खजाने घोड़े भी साथ में जा रहे यात्रा में, और कोई असुविधा नहीं हो। गत्वा सुरेंद्र भवनम, वहां से प्रभु अमरावती गए। अमरावती कहाँ है, कहाँ है अमरावती, हमने सोचा ही था आप ऐसे कहोगे, नागपुर के पास नहीं है अमरावती। इंद्र की जो राजधानी है स्वर्ग में, उसका नाम है अमरावती। तो उस अमरावती, ऊपर वाले अमरावती, इंद्र की राजधानी अमरावती, गत्वा प्रभु गए और दत्वा, गत्वा और दत्वा क्या दिया, आदित्य च कुंडले, आदित्य अदिति माता के कुंडल लौटाए और वरुण का छत्र लौटाए, वद्री का जो प्रदेश था पर्वत का वो भी लौटाए। और अब उन्हें जरूर स्वागत किया प्रभु का, और साथ में उनकी भारिया सत्यभामा भी है। सो इंद्र और इंद्राणी, इंद्र और इंद्राणी दोनों मिलके कृष्ण और सत्यभामा की पूजा अर्चना वंदना स्तुति किए, स्वागत सत्कार किए, आभार माने कि प्रभु ने इतनी बड़ी सहायता की, अदिति के कुंडल लौटाए। तो अब प्रभु द्वारका लौट रहे हैं। चोदितो भार्यो उत्पाट्य पारिजातम गुरुत्मति। तो लौटते समय सत्यभामा की प्रेरणा से प्रभु ने एक पारिजात का पेड़ पौधा उखाड़ लिया, उन्मूलनम, मूल के साथ, और गरुड़ पर रखे। अब निकल रहे थे तो इसका बड़ा विरोध हुआ। विबुधान से इंद्रान, इंद्र और देवताओं ने विरोध किया इस बात का, और हमको पूछे बिना ही आप यहां का पेड़ ले जा रहे हो। उस पेड़ प्राप्ति के लिए प्रभु को युद्ध करना पड़ा उसी इंद्र के साथ। देखो कैसे है ये, इसको कहते कृतघ्न, किए हुए उपकार जो भूल जाता है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कृतज्ञ और दूसरे कृतघ्न। तो ये कृतघ्नता हुई, इतनी सारी सहायता मदद की प्रभु ने, तो उसके बदले में एक पेड़, एक वृक्ष। प्रभु के पत्नी का विचार हुआ, इच्छा हुई, उस इच्छा से आए थे, विचार से आए थे, तो उस एक पेड़ के लिए, एक पेड़ के ऊपर इतना बड़ा झमेला, युद्ध होना। तो प्रभु ने परास्त किया और पारिजात को लाए। स्थापितः सत्यभामाया ग्रहोद्यानोपशोभने। और सत्यभामा का जो महल था तो उसके आंगन में उसको स्थापित किए, क्योंकि पहले पारिजात रुक्मिणी के घर में था लेकिन सत्यभामा के घर में नहीं था। इन दोनों का थोड़ा ईर्ष्या चलती रहती है, तो रुक्मिणी के आंगन में तो पारिजात था, तो सत्यभामा कब से कह रही थी प्रभु जी, सुनते हो, सुनो तो सही। कई बार कहा था वो पेड़ के ऊपर, उसको देखते ही जलती थी। तो अब सत्यभामा के घर में भी क्या हुआ, पारिजात का वृक्ष। तो अब वो जो पालकी दिंडी जो प्राग ज्योति ज्योतिषपुर से निकली हुई थी 16,108 राजकुमारियों को लेके वह भी द्वारका में पहुंच गई और उसी के साथ अथो मुहूर्त एकस्मिन् नाना आगारेषु ता स्त्रियः यथोपयेमे भगवांस तावद्रु वधरोव्ययः। तो अब बड़ी अद्भुत बात है, अब विवाह होने जा रहा है, ये फुल एंड फाइनल विवाह, इसके बाद अब विवाह नहीं होंगे। तो विवाह होना है 16,100 इन राजकुमारियों के साथ। ये विवाह एक ही साथ होगा लेकिन एक मंडप में नहीं। कितने मंडप होंगे? 16,100 मंडप होंगे, कल्याण मंडपम, दक्षिण भारत में कल्याण मंडप कहते, कल्याण मंडप, मंगल कार्यालय, कैसा मंगल कार्यालय, जहां मंगल, शुभ मंगल, साथ में क्या है, सावधान भी है। वो रामदास तो पूरे सावधान हो गए, आप जानते हो, उन्होंने सोचा था केवल मंगल ही होगा लेकिन साथ में वो सुनते रहे सावधान सावधान, तो कई बार सुना तो फिर सावध हो ही गए वे। फिर ऐसे दौड़े और सारी बारात उनके पीछे, किसी के हाथ नहीं लगे। और फिर उनका तो वो जंगल गए, वहां मंगल हुआ उनका, केवल मंगल ही हुआ, सावधान की कोई बात ही नहीं। तो प्रभु ने विवाह होने के पूर्व ही उतने ही महल बनाए हैं जितने राजकुमारियों के साथ उनका अब विवाह होना था। तो 16,100 महल बने हैं, प्रासाद बने हैं, उस प्रासाद जैसा, प्रभु के उस प्रासाद जैसा, उनके तो 16,100 थे, वैसा एक भी प्रासाद पुणे में नहीं है। उसका सौंदर्य, उसका जो भी डिजाइन, जो भी आंगन प्रांगन, जो भी छत, जो भी उसके स्तंभ है, अंदर का सारा इंटीरियर डेकोरेशन है, फर्नीचर्स, जो भी, इसका वर्णन भागवतम में सुनेंगे हम। ऐसा स्थान कोई बना भी नहीं सकता। तो एक हर घर में, वैसे ही अब विवाह होना था, जिस पत्नी के साथ प्रभु रहेंगे जिस घर में, वहीं पर विवाह भी हो रहा है। तो 16,100 तो राजकुमारियां तो थी, लेकिन राजकुमार यहां पति तो वैसे एक ही थे, कृष्ण। विवाह किसके साथ होगा? 16,100 अलग अलग पतियों के साथ तो विवाह नहीं होना है, एक ही व्यक्ति के साथ विवाह होना है। उस प्राग ज्योतिषपुर में सभी ने एक ही व्यक्ति को देखा था, कृष्ण को देखा था, और सभी मन ही मन में चाह रही थी, प्रार्थना की, ये पति हमें प्राप्त हो। तो द्वारका पहुंचने के बाद उनको लड़ाई नहीं करनी पड़ी, 16,100 राजकुमारियां लड़ाई कर रही, किसके ऊपर? ये हमको पति मिले, ओ नहीं नहीं हमको पति मिले, ओ दूसरी खींचातानी नहीं हो रही, टग ऑफ वॉर, कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों? प्रभु भी बन गए। कितने प्रभु बन गए? 16,100 प्रभु, 16,100 महलों में, और 16,100 राजकुमारियां तो थी ही। और वर्णन ये आता है कि यह एक ही सा मुहूर्त एकस्मिन, एक ही मुहूर्त था, जो भी समय मुहूर्त मतलब जो भी 6:10 पर मुहूर्त है, 6:10 PM मुहूर्त है, तो वह सभी स्थानों पर उस मुहूर्त पर विवाह होना है और विधि पूर्वक हुआ, ये सब वर्णन आया है। तो फिर वहाँ पर केवल कृष्ण और राजकुमारियाँ ही नहीं, वहाँ तो देवकी को भी तो होना चाहिए ना, और वहाँ तो वसुदेव भी चाहिए, और भी ऐसे कुछ व्यक्ति है जिनकी उपस्थिति अनिवार्य है, नहीं तो विवाह कार्य पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण समाधान पूर्वक नहीं हुआ, तो ऐसी भी व्यवस्था होती है। जहाँ जहाँ ये 16,100 स्थानों पर विवाह हो रहा है, तो उतने ही वसुदेव भी वहाँ है और उतने देवकी अभी वहाँ है। हरि बोल, और क्या कह, हरि बोल के और क्या कह सकते हैं, हरि बोल ही कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ये तो मानना ही पड़ेगा, इसलिए अद्भुत कहा, पहले कभी हुआ नहीं, न तो भूतो न भविष्यति, ये प्रभु ही कर सकते हैं। और सारी जब व्यवस्था हुई और सभी स्थानों पर जब सभी स्थानों पर सभी लोग उपस्थित है, तो फिर हुआ जैसे पहले हो रहा था, मंत्रोच्चारण विधिपूर्वक विवाह। अरे मन ही मन आपको कुछ क्षण समय दिया जा रहा है ताकि आप चिंतन करो, सोचो कि आप ये विवाह की शोभा, वो परिस्थिति, प्रभु का विवाह, सीता राम का विवाह, कृष्ण और ये सब राजकुमारियों का विवाह, इस कथा के माध्यम से हम भी सम्मिलित हो पाते हैं ऐसे विवाह में। ये कथा तो इनविटेशन है, मैरिज इनविटेशन, जो भी पढ़ेगा सुनेगा उस विवाह में सम्मिलित हो रहा है।